بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم. الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله مولانا العظيم. اس سورت کا نام سورت العلق ہے اور ہم اپنی بول چال میں سورہ اقرا بھی بول دیتے ہیں. یہ سورت مکی ہے یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. بلکہ اس سورت کی جو شروع والی 5 آیتیں ہیں وہ سب سے پہلے غار حیرا کے اندر نازل ہوئی. یہ مکہ المکرمہ میں ایک گوفا کا نام ہے, غار کا نام ہے, جس کو حیرا کہتے ہیں. اس سورت کے اندر 19 آیتیں ہیں. یہ پہلے نمبر کی سورت کہی جاتی ہے, یعنی اللہ کے یہاں سے اترنے کے اعتبار سے پہلی سورت. اور قرآن مجید کے موجودہ نسخوں کی ترتیب میں یہ 96 نمبر کی سورت شریفہ ہے. پہلی 5 آیت کا ترجمہ سن لیتے ہیں. اللہ تعالی ہی کے نام کی برکت حاصل کرتے ہوئے میں پڑھتا ہوں, جن کی رحمت سب کے لیے ہیں جو بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں. اے نبی, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اپنے رب کا نام لے کر قرآن پڑھو. جس رب نے اللہ نے سب کچھ پیدا کیا, جس رب نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا, اے نبی تم پڑھو اور تمہارے رب سب سے زیادہ کرم والے ہیں. جس رب نے اللہ نے قلم کے ذریعے سے تعلیم دی, اس رب نے انسان کو وہ باتیں سکھائی جن باتوں کو وہ انسان جانتا نہیں تھا. اس سورت کا نام علق کیوں؟ علق کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں؟ جمع ہوا جو خون ہوتا ہے اس کو علق کہتے ہیں. یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر طرح کا خون, جمع ہو یا بہتا ہوا ہو, ہر ایک خون کو علق کہتے ہیں. یا یہ کہ جو خون بہت زیادہ لال ہو, سرخ ہو, اس کو علق کہتے ہیں. اس سورت کی دوسری آیت میں انسان کو علق یعنی جمے ہوئے خون سے پیدا کرنے کی بات اللہ نے فرمائی. اس پر سے اس سورت کا نام سورت العلق بنا ہو یہ سمجھ میں آتا ہے. ایک ناپاک منی کا قطرہ جو تھوڑے دنوں میں جمع ہوا خون بن جاتا ہے, اس میں بہت ساری تبدیلیاں ہوتی ہیں اور پھر ایک مکمل انسان کی شکل بنتی ہے. یہ اللہ تعالی کی بڑی قدرت ہے, عظیم قدرت ہے, جس کو اس سورت کے اندر سمجھایا گیا. اس پر حضرت شیخ سعدی کا ایک شعر بھی ہے. زابر افغند قطرہ در شوی یم, زد قلب آوردن فئے در شکم, वजा कतर हर लूलू ए लाला कुनत वजी सूरत ए हर सर्वे बाला कुनत। अल्लाह की कुदरत समझाते हुए इरशाद फरमाते हैं कि रात के वक्त दो कतरे ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं। एक कतरा होता है जो बाप की पीठ से माँ के पेट में जाता है, उस नापाक कतरे से अल्लाह ताला एक खूबसूरत इंसान पैदा फरमाते हैं, और एक कतरा शबनम का, झांकड़ का, जो रात के वक्त गिरता है आसमान की तरफ से, बादलों की तरफ से, और दरिया के अंदर सीप जो होती है छिप उसके मुंह के अंदर जाता है और वो खूबसूरत मोती बन जाता है। तबारक अल्लाहु अहसनुल खालिकीन। अल्लाह ताला की कैसी अजीब प्यारी और निराली कुदरत है। अब ये कुछ थोड़ी बहुत हिस्ट्री और तारीख और इतिहास भी समझ लो। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह ताला ने अलल ऐलान नबी बनाया, आपके नबी होने का ऐलान फरमाया, तो सबसे पहले ये पांच आयत अल्लाह ताला ने उतारी। ये पांच आयत के आने के बाद तकरीबन ढाई या 3 साल तक कुरान का आना बंद हो गया, रुक गया। उसको फतरत का जमाना कहते हैं। उस जमाने में हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत रंज होता था, बहुत गम होता था। फिर अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अमीन को भेजा और सूरे मुद्दस्सिर की आयतें नाजिल हुई, और उस वक्त भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी ही हालत हुई जैसे कि ये सूरे इकरा की पहली 5 आयत के वक्त पर कैफियत और हालत हुई, और वो सूरे मुद्दस्सिर भी अधूरी थी कि फिर अल्लाह की तरफ से सूरतुल फातिहा अल्हम्द वाली सूरत आई। तो यूं कहना चाहिए कि सबसे पहली उतरने वाली ये 5 आयतें हैं। उसके बाद 2.5-3 साल के बाद सूरह मुद्दस्सिर की आयतें उतारी गई, लेकिन सूरत पूरी नहीं थी। और उसके बाद अल्हम्द वाली पूरी सूरत अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई, उतारी। इस तरह हुजूर के नबी होने का ऐलान हो गया। अब हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मक्कतुल मुकर्रमा में रहते थे। उम्र मुबारक 40 साल को होने आई तो हुजूर को सच्चे सच्चे ख्वाब आना शुरू हुए, साफ साफ ख्वाब आना शुरू हुए, इतने सच्चे और इतने साफ सुथरे ख्वाब होते थे कि रात को एक ख्वाब देखा और सुबह में ऐसा ही होता था, उसकी ताबीर समझने की और निकालने की जरूरत नहीं पड़ती थी। देखो, जो सच्चे ख्वाब होते हैं ना, वो सच्चे ख्वाब 2 तरह के होते हैं। बास सच्चे ख्वाब ऐसे होते हैं कि उसकी ताबीर खुद ब खुद सामने बिल्कुल जाहिर होती है, और कुछ सच्चे ख्वाब ऐसे होते हैं कि उसकी ताबीर निकलवानी पड़ती है जानकारों के पास, माहिरों के पास। तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो सच्चे ख्वाब आते थे वो इतने साफ सुथरे होते थे कि रात को देखा और सुबह में ऐसा ही हो जाता था। गोया जो कल होने वाला है वो अल्लाह ताला रात को पहले हुजूर को ख्वाब में दिखा देते थे। आइंदा फ्यूचर में भविष्य में जो होने वाला है वो अल्लाह ताला हुजूर को ख्वाब में रात में पहले ही दिखा देते थे। ऐसा सिलसिला चलता रहा चलता रहा। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तन्हाई बहुत अच्छी लगने लगी कि सब लोगों से अलग थलग रहे, तन्हाई में रहे, इबा एकांत में रहे, प्राइवेंसी में रहे और तन्हाई में जाकर के इबादत करे। तो मक्का के बाहर, उस जमाने के एतबार से कह रहा हूं, मक्का के बाहर एक पहाड़ है जिसको जबलुन नूर कहा जाता है। जबल अरबी में पहाड़ को कहते हैं और नूर माउंटेन, जबल नूर, नूर पहाड़। जब हम मरवा की तरफ से निकलते हैं तो जन्नतुल मुअल्ला कब्रस्तान आता है, वहाँ माँ खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा की कब्र मुबारक है। फिर उस तरफ आगे जाते हैं तो ये अन्नूर पहाड़ आता है जो हरम शरीफ में से भी नजर आता था अभी तक। अब तो बड़ी बड़ी इमारतें बन गई। और उसी पहाड़ के ऊपर ये गार है, गुफा है, केव है जिसको हीरा कहते हैं। बहुत से हिम्मत वाले लोग उस पहाड़ पर चढ़ते हैं, फजर की नमाज पढ़ के फौरन चले जाओ, ठंडक ठंडक में चढ़ना आसान होता है, अढ़ी तीन घंटे ऊपर चढ़ने के अंदर लग जाते हैं और वहाँ गारे हीरा में बैठते हैं। तो पहले जब ये बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं थी तो वहां से डायरेक्ट काबा शरीफ नजर आता था, हजरे अस्वद वाली साइट नजर आती थी। तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गार में जाने लगे और इतना रहते थे कि घर वालों की खैर खबर की जरूरत जब तक न होती वहीं रहते। जब घर वालों की खबर पूछने की जरूरत होती तो उतर करके तशरीफ ले आते, साथ में कुछ जरूरी नाश्ता वगैरह ले जाते, पानी ले जाते और जब वो खत्म हो जाता तो माँ खदीजा के पास तशरीफ ले आते। एक मर्तबा तो पूरा महीना यानी रमजान का पूरा महीना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां गारे हीरा में गुजारा। रात भी वहीं, दिन भी वहीं, पूरा वहीं रहते थे, साथ में सूखा मूखा कुछ नाश्ता पानी ले जाते थे। मालूम हुआ इबादत करने के लिए कुछ खाने की भी जरूरत पड़ती है। अच्छा खाओ, अच्छी इबादत करो और वहां बैठ करके आप अल्लाह ताला की तरफ ध्यान लगाते थे, तवज्जुह लगाते थे, अल्लाह की कुदरत में तफक्कुर और गौर करते रहते थे। मालूम हुआ कि इंसान का ध्यान अल्लाह ताला की तरफ जमाना बहुत जरूरी है। अल्लाह की तरफ ध्यान हो जावे, तवज्जो हो जावे, इनाबत हो जावे। एक मर्तबा हुजूर वहीं गार में बैठे हुए थे, गुफा में थे कि हजरत जिब्राइल अमीन आ गए, अल्लाह के फरिश्तों के सरदार जिब्राइल अमीन आ गए। ये फरिश्ते पिछले जमाने में भी नबियों के पास अल्लाह का पैगाम लेकर आते थे, वो आ गए। अल्लाहु अकबर, पहले कभी इनको देखा नहीं, अचानक देखा, पहचान भी नहीं, जिब्रेल आ गए। असली हालत अजीब व गरीब, कैसी हालत? और आकर के जिब्रेल ने तो सीधा यूं कहा, इकरा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ो, इकरा पढ़ो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, मा अना बिकारीन, मुझे पढ़ना आता नहीं है, मैं पढ़ने वाला नहीं हूँ। क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उम्मी थे, यानी दुनिया में किसी से ये लिखना पढ़ना आपने बाकायदा सीखा नहीं था। मा कुंत तदरीमल किताब अलल ईमान, खुद कुरान में है के मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किताब ईमान लिखना पढ़ना क्या होता है आप कुछ नहीं जानते थे। और दूसरी बात यह है कि जिब्रेल जो कह रहे हैं कि पढ़ो, तो क्या पढ़ने का, कैसे पढ़ने का, वो भी कुछ मालूम नहीं। वो तो डायरेक्ट ऑर्डर कर रहे हैं कि पढ़ो, तो क्या पढ़े, कैसे पढ़े? जनरली क्या होता है कि कोई लिखी हुई चीज हो, वो सामने रख कर के कहे कि ये लिखा हुआ देखो और पढ़ो, जनरली यही होता है। इसीलिए क्या पढ़ने का, किस तरह पढ़ने का, कोई लिखी हुई चीज पढ़ने की, या ये कि वो मुंह जुबानी पढ़ाएंगे और पढ़ने का, कुछ मालूम नहीं था। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे तो पढ़ना आता नहीं है। तो जिब्रील ने हुजूर को अपनी आगोश में ले लिया, अपने सीने से लगा लिया और अपने नूरानी परों के दरमियान में ले लिया, अपने बाजुओं के अंदर ले लिया और दबाया हुजूर को। हुजूर फरमाते हैं कि मुझे इस तरीके से दबाया कि मुझे तकलीफ होने लगी। अल्लाहु अकबर। फिर उसके बाद मुझे छोड़ दिया। मालूम हुआ कि जब पढ़ना आदमी शुरू करे तो पढ़ना ना आता हो तो कुछ तकलीफ तो होती है। जैसे जिब्रील अमीन अल्लाह की तरफ से पढ़ाने के लिए आए थे तो उन्होंने हुजूर को दबाया और छोड़ दिया, हुजूर को तकलीफ भी हुई। इसलिए बच्चों को शुरू शुरू में पढ़ने में कुछ तकलीफ हो, कुछ सख्ती हो, तो माँ बाप उस्ताद को खुले दिल से इजाजत देवे। इसलिए कि शुरुआत में कुछ सख्त अंदाज, कुछ तकलीफ का अंदाज भी हो सकता है और वो बच्चे के लिए फायदे की चीज होती है। तो दबाया, हुजूर को तकलीफ हुई और उसके बाद छोड़ दिया। फिर दोबारा जिब्रील कह रहे, इकरा, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ो। तो मैंने जवाब दिया, हुजूर फरमाते हैं कि मुझे तो पढ़ना नहीं आता, मा अना बिकारीन। फिर दूसरी मर्तबा ऐसा हुआ, दबाया, तकलीफ हुई, फिर हुजूर ने यही जवाब दिया। फिर तीसरी मर्तबा दबाया, फिर कहा इकरा। तो मैंने कहा मुझे तो पढ़ना नहीं आया। अब जो तीसरी मर्तबा मुझे दबाया और छोड़ दिया, तीनों मर्तबा जिब्रील अमीन ने हुजूर को दबा करके छोड़ दिया, फिर जिब्रील अमीन ने कहा कि पढ़ो, इकरा बिस्मि रब्बिकल लजी खलक, खलकल इंसान मिन अलक, इकरा व रब्बुकल अकरम अल्लजी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यालम। वाह वाह, हुजूर की जुबान मुबारक पर ये पांच आयत आ गई। जिब्रील ने पढ़ा दी, जिब्रील ने सिखा दी। वो जिब्रील ने अपने बाजुओं में, अपने सीने से लेकर के जो दबाया, तो उसका फायदा क्या हुआ? अल्लाह के यहां से जो कुरान आया, अल्लाह के यहां से जो वही आई उसका बोझ उसका वजन उठाने की ताकत इस्तेदाद हुजूर में पैदा हो गई। तो जिब्रील अमीन ने जो दबाया ना उसमें कोई सजा नहीं थी, ये तो कुरान जैसी मजबूत चीज वही जैसी मजबूत चीज जो अल्लाह के यहां से आ रही थी उसके बोझ को उसके वजन को उठाने की सहन करने की इस्तेदाद ताकत कैपेसिटी हुजूर के अंदर पैदा करनी थी। हुजूर ने ये 5 आयत पढ़ी और फिर जिब्राइल भी चले गए और खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में से बाहर निकले और सीधे अपने घर तशरीफ ले आए। उस वक्त हुजूर की एक ही बीवी थी, माँ खदीजा रदी अल्लाहु ताला अन्हा। और ये याद रखना, जब तक माँ खदीजा जिंदा रही ने तो हुजूर ने कोई दूसरी शादी नहीं की, हालांकि माँ खदीजा रदी अल्लाहु ताला अन्हा हुजूर से उम्र में 15 साल बड़ी थी, लेकिन हजरत खदीजा जब तक जिंदा थी हुजूर ने कोई दूसरा निकाह नहीं किया। घर आए और माँ खदीजा को आके क्या कहा, जम्मिलूनी जम्मिलूनी, मुझे कपड़े ओढ़ाओ मुझे कपड़े ओढ़ाओ, इसलिए कि हुजूर को बुखार चढ़ गया, तेज बुखार जिसको अपने यहाँ खेंच बोलते हैं ना, खेंच जैसा बुखार आ गया। हुजूर का दिल मुबारक पूरा हिल रहा था, क्योंकि जिब्रील की पहली मुलाकात फरिश्तों के सरदार और पहली मर्तबा कुरान उतरा और कोई पहचान भी नहीं, बिल्कुल हुजूर को बुखार खेंच दिल हिल रहा है। और माँ खदीजा को फरमा रहे जम्मिलूनी जम्मिलूनी, हजरत खदीजा ने आपके ऊपर कपड़े ओढ़ा दिए। जब कपड़े ओढ़ा दिए तो उसकी वजह से हुजूर का बुखार काबू में आ गया, ठंडी उतर गई, जो कांप रहे थे वो इत्मीनान से हो गया। अब देखो ध्यान से समझो, हुजूर को जो बुखार आ गया, कांप रहे थे, वो इसलिए कि आज से आप अलल ऐलान अल्लाह के नबी हो गए, अल्लाह ने आपको जिम्मेदारी सौंप दी, नबी बना दिया, इंसानियत को हिदायत की जिम्मेदारी सौंपी कि हिदायत की बात इंसानों को पहुंचाना है। इसका वजन इतना, इसका बोझ इतना, ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कांपने लगे, बुखार चढ़ गया। कोई जिब्राइल का डर नहीं था हुजूर को, क्योंकि हुजूर की शान तो जिब्राइल से भी बहुत ऊंची है। जिब्राइल अगर तमाम फरिश्तों के सरदार है तो हमारे हुजूर तमाम मखलूकात में सबसे अफजल है, तमाम मखलूक में सबसे अफजल मकाम हुजूर का। बाद खुदा बुजुर्ग तू ही किस्सा मुख्तसर, यानी अल्लाह के बाद कोई सबसे बड़ा ऊंचे मकाम का सबसे बड़ा ऊंचा मकाम है तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। और दूसरी बात यह है कि एक फरिश्ते को जिसको कभी देखा नहीं, उसको पहली मर्तबा देखा, असली हालत में देखा, तो तबीयत के ऊपर एक घबराहट डर का माहौल हो गया। तो हजरत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने जब हुजूर को चादर ओढ़ाई कंबल ओढ़ा दी और हुजूर का बुखार कुछ काबू में आ गया और दिल जो कांप रहा था वो भी ठंडक हो गई, तो हुजूर ने माँ खदीजा को पूरा किस्सा सुनाया। कि खदीजा वहां गुफा में क्या हुआ, गारे हीरा में क्या हुआ, पूरा किस्सा सुनाया कि इस तरह कोई आया, हुजूर जानते नहीं थे कि ये जिब्राइल है, कोई आया, उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए कहा, फिर मुझे 3 बार दबाया, फिर ये 5 आयत मुझे पढ़ाई, पूरी बात हुजूर ने माँ खदीजा को सुनाई। मर्द अपनी बीवी को इस तरह घर की, मर्द अपनी बीवी को इस तरह जरूरी बातें सुना दे रहे, हो सकता है कि बीवी की तरफ से कोई रहबरी और मदद हो जाए। तो अब बहुत ध्यान से सुनना कि जब माँ खदीजा ने हुजूर को, जब माँ खदीजा ने हुजूर को पूछा और हुजूर ने पूरा किस्सा सुनाया, तो माँ खदीजा ने क्या कहा? सबसे पहली बात कहा, अल्लाह ताला कभी भी आपको नाकाम नहीं होने देंगे, अल्लाह कभी आपको बर्बाद और हलाक नहीं होने देंगे। ये माँ खदीजा ने सबसे पहली बात कही। देखो औरत कैसी हो जो शोहर को संभाल ले रहे, तकलीफ के वक्त पर, बीमारी के वक्त पर, उलझन के वक्त पर, परेशानी के वक्त पर अपने शोहर को संभाल लेवे, शोहर की मदद कर लेवे, उसका नाम बीवी कहलाती है। और जो बीवी तकलीफ को ज्यादा करे, उलझन को और ज्यादा बढ़ावे, दुख में और क्लेश दुख करे, तो वो जो है अच्छी आदत नहीं है। सबसे पहली बात माँ खदीजा ने क्या कही कि अल्लाह आपको कभी बर्बाद नहीं होने देंगे। फिर रीजन क्या बतलाया? कोई आदमी बहुत यकीन से कोई बात कहे तो उसके पीछे कोई रीजन होता है, कोई कारण होता है, कोई वजह होती है। तो माँ खदीजा ने क्या वजह बताई, वो वजह ध्यान से सुनो। नंबर एक, आप सीला रहमी करते हैं, यानी रिश्तेदारों का हक अदा करते हैं। नंबर दो, जो बोझ में दबे हुए लोग होते हैं उनका बोझ उठा लेते हैं। नंबर तीन, जो बेरोजगार होते हैं उनको आप काम पर लगा देते हैं। नंबर चार, मेहमानों की मेहमान नवाजी करते हैं। नंबर पांच, मुसीबत में फंसे हुए इंसानों की मदद करते हैं। देखो ये 5 बड़े बड़े काम माँ खदीजा ने बतलाए। क्या बतलाया माँ खदीजा ने? कि हजरत खदीजा बहुत होशियार औरत थी, एजुकेटेड थी, पढ़ी लिखी थी, और ऐसा लगता है कि तौरात इंजील जो पहले जमाने में आसमानी किताबें थी उसमें कहीं पढ़ा होगा, या पिछले जमाने के बड़े बड़े उलमा से माँ खदीजा को ये बात मालूम हुई होगी कि जिस इंसान में अच्छे अखलाक होते हैं वो इंसान कभी बर्बाद नहीं होता, कभी महरूम नहीं होता। देखो ये 5 काम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनाए जाने से पहले भी करते थे। जब आपको अल्लाह ने नबी नहीं बनाया उस जमाने में भी ये 5 काम करते थे। और ये वो 5 काम हैं जो बहुत ऊंचे अखलाक है, बहुत बड़ी ऊंची प्यारी आदतें हैं। और ये वो 5 आदत और अखलाक है कि जिसकी वजह से अल्लाह आखिरत में तो जन्नत देंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह राजी और खुश होंगे, लेकिन दुनिया में भी इन 5 कामों की वजह से अल्लाह ताला कभी बर्बाद नहीं होने देते। बस ये 5 अखलाकी काम अपनी जिंदगी में उतारो। नंबर एक, रिश्तेदारों से अच्छा सलूक। नंबर दो, जो लोग बोझ में दबे हो, कोई कर्ज में दबा है, कोई तकलीफ में दबा है, तो उसका बोझ खुद उठा लो, यानी उसके कर्ज में मदद करो, काम में मदद करो। नंबर तीन, बेरोजगार लोगों को काम पे लगाओ। नंबर चार, मेहमानों की मेहमान नवाजी करो। नंबर पांच, मुसीबत में फंसे हुए आदमियों की मदद करो। इस वक्त ये 5ों काम करने का गोल्डन चांस मिला हुआ है, कर लो। हुजूर को तसल्ली दी माँ माँ खदीजा ने, समझा लिया हुजूर को और ये पांच बड़ी कीमती बात बतलाई। उसके बाद माँ खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के घर से निकली। कहाँ गई हुजूर को लेकर? देखो ये सबसे पहली शुरू की बात, हुजूर कैसे नबी बनाए गए। वरका इब्ने नौफल नाम के एक आदमी थे, वरका ये नाम है, ये हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के सगाई में चचाजाद भाई होते थे, रिश्तेदारी में चचा के बेटे होते थे। ये वरका बहुत लंबी उम्र हुई, बहुत लंबी उम्र, और ये हुजूर को नबुवत मिलने से पहले बुत परस्ती करने से इन्होंने तोबा कर ली थी। और उस जमाने के अंदर जो सच्चा दीन था, ईसाई दीन, नसरानी दीन, इंजील वाला दीन, हजरत ईसा सलाम वाला दीन, वो उन्होंने कबूल कर लिया था। और वो मक्का के थे इसलिए अरबी जबान तो जानते ही थे, इबरानी जबान, हिब्रू लैंग्वेज वो भी इन्होंने सीख ली थी, और इंजील को इबरानी से अरबिक में लिखते थे, ट्रांसलेशन करते थे। लेकिन बहुत बूढ़े हो चुके थे, आंख भी उनकी चली गई थी। हजरत खदीजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत वरका के पास ले गई और कहा, ए मेरे चचाजाद भाई, जरा अपने भतीजे की बात तो सुनो, यानी हुजूर के लिए कहा कि इनकी बात सुनो, ये क्या कह रहे हैं। मालूम हुआ कि इसी ऐसी कोई नई अनोखी बात पेश आ जावे तो जो इल्म वाले हो, दीन वाले हो, उनको जाकर के पूरी बात बतला करके रास्ता मालूम करना चाहिए। वरका बड़े बूढ़े थे, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा कि बताओ क्या हुआ। तो हुजूर ने गारे हीरा में जो कुछ हुआ सब बयान कर दिया, पूरी बात बतला दी कि इस तरह जिब्रेल कोई आया था, हुजूर नहीं जानते थे कि जिब्रेल आए, और उन्होंने मुझे पढ़ने के लिए कहा, मुझे तीन बार दबाया और मुझे फिर ये पांच आयतें पढ़ाई। पूरी बात वरका ने इत्मीनान से सुनी। और फिर वरका ने क्या कहा, ओहो भतीजे मोहम्मद, ये जो तुम्हारे पास कोई आया था ना, वो आने वाला नामूस यानी फरिश्ता था, जिनको अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहि सलाम के पास भी भेजा था, अब वो आपके पास आ गए। वो या वरका समझ गए, और वरका ने समझाया कि आज से आप अल्लाह के नबी बन गए, अल्लाह ने आपको नबी बना दिया। फिर वो बड़े अब्बा बूढ़े वरका क्या कहने लगे, काश, अफसोस कर रहे, तमन्ना कर रहे, आरजू कर रहे कि जब आपको नबूवत मिल रही है तो ऐसे जमाने में मैं ताकत वाला होता तो क्या करता, मैं आपकी मदद करता। आप जब लोगों को ईमान की दावत देंगे तो मैं आपके साथ रहूं, आपकी मदद करूं, आपके साथ साथ में रहूं। फिर वरका ने एक अजीब बात कही, बड़ी अजीब बात, कहने लगे, वरका काश मैं उस वक्त तक जिंदा रहूं जबकि आपकी कौम आपको वतन से निकालेगी, यानी ये मक्का वाले, ये कुरेशी लोग आपको मक्का से निकालेंगे, वहां तक काश के मैं जिंदा रहूं। अल्लाहु अकबर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ताज्जुब हुआ। हुजूर ने ताज्जुब से पूछा, क्या मेरी कौम मुझे निकाल देगी? तो वरका कहने लगे, यकीनन आपकी कौम निकालेगी, इसलिए कि जब भी कोई आदमी, अल्लाह का बंदा, अल्लाह के नबी कोई हक बात लेकर आते हैं, सच्चा दीन लेकर के आते हैं, तो उनकी कौम उनको सताती है। इसीलिए आपको भी आपकी कौम कुरैशी लोग सताएंगे। इसीलिए अगर उस जमाने में मैं जिंदा रहता तो मैं आपकी भरपूर मदद करूंगा। लेकिन हजरत वरका की आरजू अधूरी रह गई और थोड़े दिन के बाद हजरत वरका का इंतकाल हो गया और हजरत वरका दुनिया से चले गए, इंतकाल कर गए। लगता ऐसा है और यकीन है कि पिछली आसमानी किताब तौरात, इंजील वगैरह जो हजरत वरका ने पढ़ी थी उसमें उन्होंने पढ़ा था हाँ कि आखिरी नबी अभी दुनिया में तशरीफ लाने वाले हैं और आखिरी नबी के पास अल्लाह का फरिश्ता आएगा, तो वो बात इन्होंने पिछली आसमानी किताबों में पढ़ रखी थी और हुजूर की सारी निशानियां, बल्कि सहाबा की निशानियां अल्लाह ने पिछली आसमानी किताब तौरात और इंजील में बयान फरमाई थी। ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل। तो पिछली आसमानी किताबों की जो बातें तो वरका जानते थे, उस बातों की वजह से वरका ने यकीन कर लिया कि ये मेरे भतीजे मोहम्मद अल्लाह के नबी है, नबी बना दिए गए। इसीलिए इन्होंने आरजू की, काश के मेरे अंदर ताकत होती तो मैं मदद करता। मालूम हुआ कोई भी सही सच्ची बात हो उसकी मदद करनी चाहिए, उसका साथ देना चाहिए, उसका विरोध नहीं करना चाहिए, उसकी मुखालफत नहीं करनी चाहिए। और जो भी सही सच्ची बात हो तो उसकी मदद न कर सके तो कम से कम दिल में अच्छा जज्बा, अच्छी नीयत, अच्छा इरादा रखे कि मेरे पास ताकत होती, कुव्वत होती, हिम्मत होती तो मैं जरूर इनकी मदद करता, तो उस पर भी अल्लाह ताला बहुत कुछ नवाजते हैं। तो हक की मदद या हक की मदद करने का हौसला, जज्बा, इरादा, नीयत, ये भी इंसान को बहुत बड़ा अजर सवाब दिलाने के लिए काफी है। इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से बाकायदा नबी बना दिया गया और आज से आप नबी बन गए, जिस दिन अलल ऐलान नबी बन गए, जिस दिन ये पांच आयतें अल्लाह के यहाँ से आई। और उसके बाद तकरीबन 2.5-3 साल तक जो है जिब्रील नहीं आए, कुरान उतरना बंद हो गया, फिर सूरे मुद्दस्सिर की आयतें आई और हजरत जिब्रील ऐसी मोहब्बत छोड़ के गए कि हुजूर को जिब्रील के न आने से बहुत तकलीफ होने लगी। इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक, इकरा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, अल्लमल इंसान मा लम यअलम। सदकल्लाहु मौलानल अज़ीम। सूरतुल अलक यानी इकरा वाली सूरत किस तरह उतरी और किस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का नबी होने का ऐलान किया गया, ये पूरा किस्सा गुज़िश्ता कल की मजलिस के अंदर आपको सुनाया गया था। अब आज ये पहली पांच आयतों की तफसीर जरा ध्यान से सुन लीजिए। याद रखिए, अल्लाह ताला के ऊपर तवक्कुल करना, अल्लाह ताला से मदद हासिल करना हर मुसलमान के लिए जरूरी है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का खुलासा यही है कि मोमिन अल्लाह पर तवक्कुल करता है, अल्लाह पर भरोसा करता है, अल्लाह से मदद हासिल करता है। और जबान से औज़ु बिस्मिल्लाह خاص طور پر بسم اللہ پڑھ لینا یہ سنت ہے، مستحب ہے۔ یہ بھی روایتوں میں آیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل امین پہلی مرتبہ آئے تو انہوں نے آ کر کے کہا، قل یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو کہ میں اللہ تعالیٰ سے حفاظت مانگتا ہوں، یعنی اعوذ باللہ پڑھو۔ ثم قال، پھر جبرائیل نے یوں کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ گویا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترنا شروع ہوا اسی وقت سے اعوذ اور بسم اللہ کا مبارک سلسلہ بھی شروع ہوا۔ یہ ایک روایت ہے۔ اب اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جب بھی قرآن پڑھے تو اللہ کا نام لے کر پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کے شروع کرے، تاکہ اللہ کی مدد ہماری تلاوت کے اندر شامل ہو جاوے، اور اللہ تعالیٰ کے نام کی برکت سے پڑھنا ہمارے لیے آسان بھی ہو جاوے۔ اس لیے کہ قرآن کو پڑھنا یہ بھی ایک بڑا کام ہے، اللہ کا مبارک نام ہوگا تو یہ بڑا کام آسان ہو جائے گا، اور جس پڑھنے میں اللہ کا نام ہو وہ پڑھنا صحیح معنی میں پڑھنا کہا جائے گا۔ باقی جس پڑھنے میں، جس وانچن میں، جس تعلیم میں اللہ کا مبارک نام نہ ہو، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری نہ ہو، وہ پڑھنا پڑھنا نہیں کہلاتا ہے، صحیح معنی میں وہ پڑھنا نہیں کہلاتا ہے۔ تو جب اللہ کے مبارک نام سے ہو تو وہ صحیح معنی میں پڑھنا کہا جائے گا۔ اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے امی بنایا تھا۔ امی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دنیا میں کسی سے لکھنا اور پڑھنا نہیں سیکھا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سب سے اونچی بنائی، سب سے نرالی بنائی، اس لیے دنیا میں کسی سے لکھنا اور پڑھنا نہیں سکھایا، بلکہ خود اللہ نے آپ کو سب کچھ سکھایا۔ اور لکھنا اور پڑھنا، علم، نالج، ایجوکیشن کو حاصل کرنے کا جو عام ذریعہ ہے کہ کسی استاد سے، کسی ٹیچر سے، کسی ماسٹر جی سے آدمی سیکھے، اس عام طریقے کو ہٹا کر بغیر کسی واسطے کے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم عطا فرمایا۔ اس لیے فرمایا، اقرا بسم ربک الذی خلق، تو اللہ تعالیٰ کے نام سے پڑھنا، اس لیے ہر پڑھنے میں اللہ کا نام شروع میں ہو، ہر کام میں اللہ کا نام شروع میں ہو، ہر چیز میں اللہ کا نام شروع میں ہو، تو انشاءاللہ اس کام میں برکت ہوگی، حفاظت ہوگی۔ رات کو گھر کا دروازہ بسم اللہ پڑھ کے بند کر دو، فریج کا دروازہ بسم اللہ پڑھ کے بند کر دو، اور کباٹ کا، پنجرے کا دروازہ بسم اللہ پڑھ کے بند کر دو، تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے۔ اور آیت میں رب کا لفظ آیا، کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ ہر طرح کی تربیت کرتے ہیں، اور یہ تربیت ایسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی کہ اللہ نے آپ کو نبوت کے اونچے مقام پر پہنچا دیا، اور بہت اعلیٰ مقام دیا، بہت اونچے مقام پر پہنچا دیا۔ الذی خلق، جس اللہ نے پیدا کیا۔ معلوم ہوا کہ وجود यानी पैदा करना ये सबसे पहला इनाम है। इंसान को जितनी भी नेमत मिलती है ये पैदा होने के ऊपर है। इंसान को ईमान मिला, अगर पैदा हुआ तो मिला, पैदा ही नहीं होता तो ईमान भी नहीं मिलता। इंसान खाता है पीता है, ईमान मिला तो खाता है पीता है, अरे जिंदगी मिली पैदाइश हुई तो खाता पीता है। तो सबसे पहली और बड़ी नेमत ये है कि अल्लाह ने इंसान को पैदा किया और तमाम मखलूक को अल्लाह ने पैदा किया, सारी दुनिया और कायनात को अल्लाह ताला ने पैदा किया। और फिर आगे फरमाया इकरा बिस्मि रब्बिकल लजी खलक खलकल इंसान मिन अलक। अब अल्लज़ी खलक में इंसान भी आ गया, जिन्नात भी आ गए, तमाम मखलूक आ गई, लेकिन फिर दूसरी आयत में अल्लाह ने इंसान का स्पेशियल नाम लिया खलकल इंसान, कि जिस अल्लाह ने इंसान को पैदा किया, इसलिए कि तमाम मखलूक का खुलासा इंसान है। तमाम मखलूक के अंदर सबसे ज्यादा शरीफ अशरफ इज्जत वाली ऊंचे मर्तबे वाली मखलूक वो इंसान है। और अगर इंसान ध्यान से देखे तो तमाम मखलूक के अंदर जो कुछ है वो अकेले इंसान के अंदर भी है, बल्कि तमाम दुनिया के अंदर जो कुछ है वो अकेले इंसान के अंदर भी है। तो ये पूरा जगत पूरी दुनिया इतनी बड़ी और इंसान एक छोटा जगत है, छोटी दुनिया है। देखो दुनिया में पहाड़ है तो इंसान के बदन के अंदर पहाड़ जैसी हड्डियां हैं, दुनिया के अंदर बहता हुआ पानी है तो इंसान के बदन में भी बहता हुआ पानी बहता हुआ खून है, दुनिया के अंदर जो है दरख्त तो उगते हैं तो इंसान के बदन पर बाल उगते हैं। गोया इस पूरी दुनिया में जो कुछ अल्लाह ने रखा वो अकेले इंसान के अंदर भी रख दिया। और इंसान को अल्लाह ने अक्ल अता फरमाई, इल्म अता फरमाया, जिसकी बरकत से इंसान ज्यादा से ज्यादा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने वाले बने। और एक बात ये भी है कि कुरान जो अल्लाह ने उतारा उसका असल मकसद है अल्लाह के अहकाम, शरीयत के कानून, मसले मसाइल। और ये इंसान के साथ खास है कि अल्लाह ताला ने इंसान में से नबी बनाए, नबियों को किताब दी और नबियों के जरिए से अल्लाह ने मसले मसाइल दुनिया के अंदर आम किए। तो तमाम मखलूक में इंसान का अल्लाह ने खास तौर पर नाम लिया। फिर तीसरी आयत में फरमाया इकरा व रब्बुकल अकरम, ये डबल डबल इकरा आ रहा है। पहली आयत में भी आया इकरा बिस्मि रब्बिकल लजी खलक, तीसरी आयत में भी आया इकरा व रब्बुकल अकरम। इकरा के माने आते हैं पढ़ो, वांचन करो, रीडिंग करो। ये डबल डबल क्यों आया? तो एक मतलब तो उसका ये है कि पहले इकरा में खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ने के लिए फरमाया, और दूसरे इकरा का मतलब है दीन की दावतो तबलीग के लिए लोगों को पढ़ाना। बाद हज़रात ने यूं भी कहा कि पढ़ने की ताकीद करने के लिए डबल डबल मर्तबा कहा जा रहा है, पढ़ो पढ़ो, इसलिए कि डबल डबल मर्तबा कहेंगे तो पढ़ना कितना इम्पोर्टेंट है, कितना अहम है, ये सबको पता चल जाएगा। और आगे ये फरमाया कि इकरा बिस्म इकरा व रब्बुकल अकरम। ये अकरम क्या लफ्ज है? अकरम का मतलब ये है कि अल्लाह ताला बड़े करीम रब है, वो जो चाहे वो अता करते हैं। और ये बात भी आ गई कि इंसान को पैदा करने में अल्लाह ताला की कोई गरज नहीं है, अल्लाह का अपना कोई फायदा नहीं है, بلکہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے انسان کو پیدا فرمایا. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور فضل ہے. باقی انسان کو پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی. آگے فرمایا الذی علم بالقلم, جس اللہ تعالیٰ نے انسان کو تعلیم دی, ایجوکیشن دیا, شکشن دیا قلم کے ذریعے سے. دیکھو بھائی, یہ تعلیم, علم, ایجوکیشن, شکشن, نالج ایسی چیز ہے کہ انسان تمام جانوروں کے اندر الگ الگ ہے اسی علم کی وجہ سے. علم اتنی بڑی نعمت ہے کہ تمام مخلوق کے اندر انسان کا درجہ اونچا ہو گیا. دیکھو حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان, پہلے نبی, ان کا فرشتوں کے ساتھ کمپٹیشن ہوا, فرشتوں کے ساتھ مقابلہ ہوا. اس وقت پر کیا ہوا تھا کہ بہت ساری چیزیں رکھی گئی, فرشتوں کو کہا گیا کہ ان چیزوں کے نام بتلاؤ, تو فرشتوں کو نام ہی نہیں آئے اور حضرت آدم علیہ السلام نے فٹافٹ سب چیزوں کے نام بتلا دیے. تو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس علم تھا, نالج تھا, شکشن تھا, تعلیم تھی, اور فرشتوں کے پاس وہ چیز نہیں تھی. تو اندازہ لگاؤ کہ تمام جانور کے اندر انسان کو اللہ نے علم دیا, اس کی وجہ سے یہ الگ تھلگ ہو گیا. اور تمام مخلوق میں انسان جو سب سے زیادہ شریف ہوا, سب سے زیادہ اونچے درجے کا ہوا, وہ بھی اسی علم کے ذریعے سے ہوا. اسی لیے تو فرشتوں نے کہا تھا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. اے اللہ, ہمارے پاس کوئی علم نہیں, نالج نہیں, جتنا آپ نے سکھلایا ہم اتنا ہی جانتے ہیں. اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا علم دیا, بہت بڑا نالج عطا فرمایا. اور دیکھو یہ تعلیم, یہ علم, یہ شکشن زبان سے بھی ہوتی ہے, زبان سے بھی سکھائی جاتی ہے, اور قلم کے ذریعے, پین کے ذریعے سے لکھ کر کے بھی ہوتی ہے. دونوں طریقے سے علم سکھایا جاتا ہے. اسی لیے ایک حدیث سنو, حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلی چیز اللہ نے کیا پیدا فرمائی, تو کہا سب سے پہلے اللہ نے قلم پیدا کیا, پین پیدا کیا, اور قلم کو حکم دیا, اور اس قلم نے لکھنا شروع کیا, اور قیامت تک جتنی چیزیں ہونے والی تھی سب چیزیں قلم نے لکھ دی. اور یہ اللہ تعالی کے پاس عرش پر موجود ہے. دوسری ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت پہلے جب مخلوق کو پیدا کیا تو اپنی کتاب میں جو عرش پر اللہ کے پاس ہے یہ کلمہ لکھا, ان رحمتی سبقت غضبی, میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب رہے گی, یعنی میری رحمت اوپر رہے گی اور میرا غصہ دبا ہوا رہے گا. معلوم ہوا کہ سب سے پہلے قلم, پین, کتاب, بک اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی. اس سے اندازہ لگاؤ کہ قلم اور کتاب کی کتنی ویلیو ہے, کتنی اہمیت ہے, کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. اسی لیے میں مسلمانوں کو کہا کرتا ہوں, جیب میں پیسے نہیں ہوں گے تو چل جائے گا, لیکن جیب میں پین ہونا چاہیے, ڈائری ہونی چاہیے, تاکہ جو بھی دین کی بات سننے کو ملے وہ لکھ لے وے, علم کی بات لکھ لے وے, نالج کی بات لکھ لے وے. ہر ایمان والے, ہر انسان کے جیب میں پین ہو, نوٹ بک ہو, ڈائری ہو, یہ ہر ایک کی جیب کے اندر ہونا چاہیے. پھر سمجھو, قلم تین ہے, پین تین ہے. سب سے پہلا قلم جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور پوری دنیا کی تقدیر اس کے پاس لکھوائی, इसीलिए तो देखो कुरान में एक जगह अल्लाह ने पेन की कसम खाई, अल्लाह कसम खावे और कलम और पेन की कसम खावे, नून वल कलम वमा यस्तुरून मा अंत बिनिअमति रब्बिका बिमजनून। देखो अल्लाह ताला कलम की कसम खा रहे, पेन की कसम खा रहे और कलम और पेन के जरिए से जो लिखते हैं उसकी कसम खाते हैं। अंदाजा लगाओ ये पेन कितनी इम्पोर्टेंट चीज है, कितनी अहम चीज है। एक दूसरी पेन है फरिश्तों की पेन, जिसके अंदर इस दुनिया में जो कुछ होने वाला है वो तमाम चीजों की तकदीर और इंसानों के आमाल वो फरिश्ते लिखते हैं। और तीसरे इंसानों के कलम है जिसके जरिए इंसान लिखते हैं। एक से एक कलम आजकल अब दुनिया के अंदर आ गए और इंसान उससे लिखते हैं। जब बच्चे छोटे हो तभी से उसके हाथ में पेन पकड़ाओ ताकि वो लिखना सीखे। और हर ईमान वाला लिखने पढ़ने वाला होना चाहिए, कोई अभण अंगूठा छाप नहीं रहना चाहिए, हर एक को लिखते पढ़ते आना चाहिए। और देखो पहले नंबर वाली कलम उसको अल्लाह ने खुद अपने मुबारक हाथ से पैदा फरमाया। और सुनो अल्लाह ताला ने इस तमाम जगत में सारी दुनिया में चार चीज ऐसी है कि खुद अपने हाथ से अल्लाह ने बनाई, बाकी तमाम चीजों को अल्लाह ताला ने अपने ऑर्डर से बनाई। कुन फयकून, हो जा तो तमाम चीजें हो गई, लेकिन चार चीजें अल्लाह ने खुद पैदा फरमाई अपने मुबारक हाथ से। नंबर एक कलम, नंबर दो अर्श, नंबर तीन जन्नत अदना, और नंबर चार हजरत आदम अलैहिस्सलाम। ये चार को खुद अल्लाह ताला ने पैदा फरमाया। अब ये लिखना पढ़ना दुनिया में कब से आया, इसकी हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है, तारीख क्या है, तो जब से इंसान दुनिया में आया यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम, उनको अल्लाह ताला ने लिखना पढ़ना सिखा दिया था और उन्होंने लिखना शुरू किया। और बाद हजरात कहते हैं कि अल्लाह के एक नबी है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम, जो आदम अलैहिस्सलाम के बहुत बाद में हैं और हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पहले हैं। ये इदरीस भी अल्लाह के एक नबी है, कुरान में उनका भी तस्केरा है। उस इदरीस अलैहिस्सलाम को सबसे पहले अल्लाह ने लिखना सिखाया। इससे मालूम हुआ कि हजरत आदम हो कि हजरत इदरीस हो, सबसे पहले लिखना पढ़ना खुद अल्लाह ताला ने सिखाया। और देखो भाई बहनों, ये लिखना पढ़ना कितनी बड़ी नेमत है। कुरान आज हमारे सामने मौजूद है, ये लिखने पढ़ने की बरकत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को लिखवाया, सहाबा ने ताबीन को लिखवाया, इस तरह ये कुरान लिखते लिखते हम तक पहुंचा। हदीस पाक, हुजूर की प्यारी बातें, ये सहाबा ने लिखी, ताबीन ने लिखी, तबे ताबीन ने लिखी, हदीस के बड़े बड़े आलिमों ने लिखी, तो हम तक ये प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक पहुंची, शरीयत पहुंची, मसले मसाइल पहुंचे। तो ये सब चीजें जो पहुंची ये कलम की बरकत है। तो आज तक ये दीन सही सलामत हम तक पहुंचा ये कलम की बरकत से है, कि कलम भी इसमें बहुत बड़ा जरिया है कि जिसकी बरकत से अल्लाह ने दीन को हम तक पहुंचाया। इसीलिए देखो इस्लामी जगत में, इस्लामी लाइब्रेरियों में इतनी किताबें हैं कि आप थक जाओ उसको गिनते गिनते। इतनी किताबें, लाखों की तादाद में कुरान की तफसीर, हदीस पाक की तफसीर, हदीस की किताबें, कुरान को अलग अलग अंदाज में लिखना, मसले मसाइल, तसव्वुफ, इतिहास, पता नहीं कौन कौन से टॉपिक के ऊपर कितनी लाखों किताब दुनिया के अंदर आज तक लिखी गई, लिखी जा रही है। और जब तक अल्लाह ताला चाहेंगे ये लिखने का सिलसिला दुनिया में चालू रहेगा।
लेकिन एक बात और भी ध्यान से समझो कि जिस तरह कलम के जरिए से इल्म, शिक्षण, तालीम और नॉलेज होता है, उसकी पब्लिसिटी होती है, उसकी इशात होती है, उसका फैलावा होता है, अल्लाह ताला इल्म सीखने सिखाने के लिए कलम के मोहताज नहीं है। कलम के अलावा दूसरे भी बहुत सारे जरिए हैं जिसके जरिए अल्लाह ताला इल्म देते हैं, उसको भी समझ लेना चाहिए। नंबर एक, अकल। अल्लाह ताला ने इंसान को अकल अता फरमाई, समझ अता फरमाई, जिसके जरिए से इंसान बहुत सारा इल्म हासिल करता है। एक बच्चा देखो, इस बच्चे को अल्लाह ताला ने रोना सिखाया, रोने के जरिए अपनी तमाम जरूरतें पूरी कर लेता है। यानी बच्चा रोता है तो माँ समझ जाती इसको भूख लगी, बच्चा रोता है माँ समझ जाता है कि इसकी नेपी बदलने की है, उसने पेशाब पाखाना कर दिया है। अजीब, देखो इस बच्चे को रोना किसने सिखाया? अल्लाह ने सिखाया। इस बच्चे को इल्म किसने दिया? अल्लाह ने दिया। ये बच्चा माँ की छाती से दूध पीता है, कैसा अपना मुंह चलाता है, कौन से ट्रेनिंग सेंटर में गया, कौन सी कॉलेज में गया, अल्लाह ने उसको डायरेक्ट इल्म अता फरमाया। बल्कि मैं आपको अजीब बात बतलाऊं, आपने प्रैक्टिकल जिंदगी में देखा होगा, लेकिन हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने अजीब बात लिखी है कि बच्चे के रोने की स्टाइलें भी अलग अलग है। बच्चे का कुछ रोना ऐसा होता है तो कुदरती तौर पर वो रोने के जरिए माँ समझ जाती है कि इसको भूख लगी, फौरन माँ दूध पिलाती है। बच्चे का कुछ रोना ऐसा होता है कि माँ कुदरती तौर पर समझ जाती है कि इसकी नेपी खराब हो गई है। बच्चे का कुछ रोना ऐसा होता है कि कुदरती तौर पर माँ समझ जाती है कि इसके पेट में दर्द हो रहा है। अजीब अल्लाह ताला का निजाम देखो। अकल बहुत बड़ी नेमत अल्लाह ने अता फरमाई और अकल के जरिए से इंसान बहुत सारा इल्म हासिल करता है। नंबर दो, मुशाहदा, यानी देख देख करके इंसान बहुत सारी चीजें सीखता है। एक दर्जी दूसरे दर्जी को देखता है और सीख जाता है, एक ड्राइवर दूसरे ड्राइवर को देखता है गाड़ी चलाना सीख जाता है, तो मुशाहदा और देखने के जरिए भी इल्म हासिल करता है। आदमी किताब पढ़ता है, कुरान पढ़ता है, आंख से देखकर पढ़ता है और उसके जरिए से इल्म हासिल करता है। नंबर तीन, वही। वही जिसको कहते हैं, अल्लाह ताला फरिश्ते के जरिए से जो बात भेजते हैं नबियों पर, रसूलों पर, वो इल्म हासिल करने का, शिक्षण हासिल करने का सबसे मजबूत, सबसे पक्का, सबसे सही, बेहतरीन जरिया है। और चौथी चीज, इल्हाम। इल्हाम के माने दिल के अंदर बात का डाला जाना। बहुत सारी बातें इंसान के दिलों में अल्लाह ताला की तरफ से डाली जाती है। अल्लाह ताला इंसान के दिल के अंदर बहुत सारी बातें डालते हैं। तो ये देखो, सब अलग अलग तरीके हैं, कलम के अलावा भी, अकल से देख करके, वही के जरिए, दिल में इल्हाम के जरिए से अल्लाह ताला इंसान को सिखाते हैं। तो इस आयत के अंदर इंसान को तालीम दी गई कि इल्म तेरे पास आवे, हुनर आवे, एजुकेशन आवे, तो इसको अपना कमाल मत समझना, अपना जाती कमाल मत समझना कि मैं बहुत बड़ा इल्म वाला, मेरे पास बहुत नॉलेज है, मेरे पास बहुत जानकारी है। कभी इंसान जो है जाती तौर पर अपना कमाल न समझे। खुद अल्लाह फरमाते हैं, अखरजकुम मिन बुतूनि उम्महातिकुम ला तालमून शैआ। अल्लाह ताला ने तुमको तुम्हारी माओं के पेट से दुनिया में निकाला, तुम तो कुछ भी नहीं जानते थे। फिर अल्लाह ताला ने तुमको नॉलेज दिया, इल्म सिखाया। तो इंसान को इल्म मिले, नॉलेज मिले, शिक्षण मिले, तो यूं समझे कि मेरे अल्लाह ने सिखाया, मेरे मालिक ने मुझको सिखाया। और बाद हजरत ने अजीब बात लिखी के अल्लम अल इंसान मालम या आलम, कि इंसान को वो सब बातें सिखाई जो इंसान जानता नहीं था। तो इसमें तमाम इंसान भी मुराद है, लेकिन इंसान मुअर्रब बिल्लाह में इसलिए खास इंसान भी मुराद है। कौन? हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा इल्म दिया कि तमाम मखलूक में सबसे ज्यादा इल्म अल्लाह ने अकेले हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किया। हुजूर के जैसा आलिम कोई नहीं, हुजूर के जैसा इल्म वाला कोई नहीं। सबसे बड़ा इल्म, सबसे बड़ा नॉलेज, सबसे बड़ा शिक्षण अल्लाह ने हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। और यहाँ तक के लोहो कलम का इल्म भी अल्लाह ने हुजूर को अता फरमाया। और बाद मुफस्सिरीन कहते हैं कि अल्लम अल इंसान से मुराद हजरत आदम अलैहिस्सलाम है, क्योंकि सबसे पहले वो इंसान है और सबसे पहली तालीम हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की तरफ से दी गई। अल्लाह की तरफ से आदम अलैहिस्सलाम को इल्म सिखाया गया। तो बड़ी अजीब बातें अल्लाह ताला ने ये पांच आयत में बयान फरमाई। बहुत ध्यान से समझो मेरे मुसलमान भाइयों, इल्म, शिक्षण, नॉलेज, ये हुजूर पर आने वाली सबसे पहली वही, सबसे पहली कुरान की आयत के अंदर है। इसीलिए मुसलमान को लिखना पढ़ना सीखना चाहिए। और दूसरी बात क्या, बिस्मि रब्बिक, अपनी तरबियत करने वाले अपने रब के मुबारक नाम से हो, यानी इल्म ऐसा हो कि जिसमें अल्लाह का डर हो, अल्लाह की मोहब्बत हो, अल्लाह की फरमा बरदारी हो, अल्लाह के यहाँ से आए हुए इल्म के साथ उस इल्म का कनेक्शन हो। कोई भी इल्म, कोई भी शिक्षण, कोई भी तालीम लो तो ऐसी होनी चाहिए कि जो अल्लाह के यहाँ से इल्म आया कुरान का, हदीस का, उसके साथ उसका कनेक्शन हो, उसके साथ उसका रब्त हो, उसके साथ उसका ताल्लुक हो। और कोई भी चीज पढ़े आदमी, अल्लाह के मुबारक नाम के साथ होना चाहिए। तो अल्लाह ताला ने हमको पढ़ने के लिए खास ताकीद फरमाई और अल्लाह ने अपनी पैदाइश वाली नेमत याद दिलाई। मेरे बंदो, तुम याद करो कि मैंने तुमको पैदा किया, अगर मैं तुमको पैदा न करता तो क्या तुम कर लेते थे। अल्लाह अकबर। और अल्लाह ताला बड़े करीम है, जिस करीम इंसान ने करीम को, जिस करीम अल्लाह ने हम सबको पैदा किया और उसने हमको पढ़ने की तालीम दी और कलम के जरिए से सिखाया, और जो कुछ हम नहीं जानते थे वो तमाम की तमाम चीजें अल्लाह ताला ने हमको सिखाई। इसलिए पढ़ना लिखना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अहम और जरूरी है। लेकिन एक खुलासे की बात भी समझ लो, बहुत अहम में वजाहत और खुलासा आपके सामने कर दूं कि देखो, ईमान वालों के लिए सबसे पहली तालीम है कुरान पाक की। कुरान के अल्फाज पढ़े, छोटे छोटे महल्ले के अंदर जो मकतब है, मदरसे है, उसमें आकर के कुरान के सही अल्फाज पढ़े, ये सबसे पहला नॉलेज ईमान वालों के लिए। साथ में है ईमान और अकीदा, ईमान मुजमल, ईमान मुफस्सल, अल्लाह को एक माने, नबियों को, रसूलों को, आसमानी किताबों को, मरने के बाद की जिंदगी को, हिसाब किताब को, ये सब चीजों का इल्म लेवे, जिसको ईमान मुजमल, ईमान मुफस्सल का इल्म कहते हैं। हदीस पाक का इल्म लेवे, प्यारे आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक जिंदगी कैसी थी वो इल्म लेवे, सहाबाए किराम रिद्वानुल्लाहि ताला अलैहि मजमईन की मुबारक जिंदगी कैसी थी उसका इल्म लेवे। और जो जरूरी चीजें हैं, वुजू के मसले मसाइल, गुसल के मसले मसाइल, वुजू कैसे करने का, गुसल कैसे करने का, वुजू किन चीजों से टूट जाता है, गुसल किन चीजों से जरूरी होता है, नमाज कैसे पढ़ते हैं, रोजा कैसे रखते हैं, जकात कैसे देने की, हज कैसे देने का, कैसे खरीदने का, कैसे बेचने का, कैसे बिजनेस करने का। तो एक मुसलमान के लिए शरीयत का, दीन का, कुरान का इल्म, ये सबसे पहले नंबर के ऊपर है। और देखो, एक ईमान वाले को जिंदगी गुजारने के लिए जितने अकीदे और जितने मसले मसाइल की जरूरत पड़ती है, उसका इल्म लेना ये फर्ज़े ऐन है, हर एक के लिए फर्ज है। जो नहीं सीखेगा वो गुनहगार होगा। हदीस में खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम, इल्म जरूरी, इल्म सीखना और तलब करना हर मुसलमान मर्द औरत के लिए जरूरी है। और उसके बाद शरीयत का पूरा इल्म, ये तो बस्ती में एक आध दो आदमी पूरे आलिम बन के आ जावे बड़े दारुलूम में जाकर के, तो पूरी बस्ती वालों के लिए फर्ज किफाया हो जाएगा। तो असल इल्म ये है। उसके बाद जिसको आजकल दुनिया में शिक्षण कहते हैं, स्कूलों में, कॉलेजों में, हाई स्कूलों में, उसमें से भी कुछ सीख ले वे, जैसे हिसाब किताब सीख ले वे। और जो है हिसाब किताब सीखेगा तो सही मामला कर सकेगा, सही वारसा वेचनी कर सकेगा। और ये खगोल शास्त्र, भूगोल शास्त्र, जोग्राफिया, फलकिया, एस्ट्रोलॉजी कुछ सीख ले वे, ताकि नमाज का टाइम टेबल, नमाज का वक्त उसको मालूम हो सके। तो इस तरह ये जो दुनियावी शिक्षण जो कहलाते हैं, जो आजकल ज्यादातर स्कूल, कॉलेज, हाई स्कूलों में दिया जाता है, वो भी सीख ले वे। लेकिन उसमें जो जायज है वो सीखे, नाजायज से अपने आप को बचावे। तो सबसे पहली चीज है शरीयत का इल्म, दीन का इल्म, और वही दी इल्म इल्म कहलाता है। तो ये चीज मुसलमान को जहन में रखनी चाहिए। आज बहुत सारे लोग जब भाषण और लेक्चर करने खड़े होते हैं तो वो कुरान की आयत बयान करते, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, और यूं कहते हैं कि देखो हुजूर पर कुरान की पहली आयत आई, उसमें पढ़ने के लिए कहा था, इल्म के लिए कहा था, वांचन रीडिंग के लिए कहा था। लेकिन वो ये नहीं कहते कि आगे बिस्मि रब्बिक भी है, अल्लाह के रब के नाम के साथ, रब अल्लाह के मुबारक नाम के साथ, उसमें इशारा आ गया कि शरीयत की तालीम, कुरान की तालीम, दीन की तालीम। तो मुसलमान अगर दीन की तालीम न लेवे, शरीयत की तालीम नहीं लेवे, और दुनिया में बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लेवे, तो ये जो है वो मुसलमान की जिम्मेदारी अदा नहीं हुई। वो मुसलमान गलती में है, भूल में है। सबसे पहला इल्म लो कुरान का, हदीस पाक का, शरीयत का। और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से कहूँ, जो कुरान का इल्म लेगा, हदीस का इल्म लेगा, शरीयत का इल्म लेगा, उसको सारी चीजें आ जाती है। कुरान हदीस शरीयत में सब कुछ आ जाता है। और जिसके पास ये इल्म होता है ना, वही सही माने में दुनिया में होशियार, ज़हीन, अकलमंद होता है। बाकी जरूरी इल्म दूसरे भी हासिल कर लेने चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको सही समझ अता फरमाए, दीन का सही इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, जहालत से, अभणता से अल्लाह ताला हिफाजत के अंदर रखे, और अल्लाह ताला हमारी सोच और समझ को भी सही और दुरुस्त बना देवे। यहाँ एक बात और भी जिमनन कह दूं, बाद लोग जब भाषण और लेक्चर करने खड़े होते तो एक बात सुनाते हैं, उतलुबुल इल्म वलव कान बिस्सीन, के हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं फरमाया कि शिक्षण लेने के लिए चीन जाना पड़े तो चीन तक जाओ। ये कोई हदीस नहीं है, इतना याद रखना। हमको हदीस की मुस्तनद किताबों में कहीं भी हदीस के तौर पर मुझे ये नहीं मिला है। इसीलिए कह दूं कि इसको अल्लाह के नबी की हदीस मत बतलाया करो। बस यूं कह सकते हैं कि दूर दराज का सफर भी इल्म के लिए करना चाहिए।
कल्ला इन्नल इंसान लयतगा, ये सूरतुल अलक की 6 नंबर की आयते करीमा है। अल्लाह ताला के पाक इरशाद का खुलासा ये है कि सच बात ये है कि इंसान हद से निकल जाता है। दूसरा तर्जुमा होता है खुल्लम खुल्ली शरारत करता है। अर्रआहु सगना, क्योंकि उसने खुद को बेनियाज मालदार समझ लिया है। इन्न इला रब्बिकर रुजआ, यकीनन तुम्हारे रब ही की तरफ सबको लौट कर जाना है। अरअयता अल्लज़ी यनहा, क्या तुमने उस शख्स को देखा जो एक खास बंदे को रोकता है। अबदन इदा सोल्ला, जबकि वो बंदा नमाज पढ़ता है। और अईता इन काना अलल हुदा, भला बताओ अगर वो नमाज पढ़ने वाला बंदा सही रास्ते पर कायम हो। अव अमर बित्तकवा, या तकवा सिखलाता हो तो क्या उस नमाज से रोकना जुल्म नहीं है। अरअयता इन कज़्ज़ब व तवल्ला, भला ये भी बताओ कि अगर वो रोकने वाला हक को जुठलाता हो और मुंह फिराता हो। अलम यालम बि अन्ना अल्लाह यरा, क्या उस शख्स को मालूम नहीं है कि अल्लाह ताला देख रहे हैं। कल्ला लइल्लम यंतहि लनस्फअन बिन्नासिया, नमाज से हरगिज रोकना नहीं चाहिए। अगर वो रोकने वाला बाज नहीं आया, रुक नहीं गया, तो हम उसको पेशानी के बाल पकड़ करके घसीटेंगे। नासियतिन कादिबतिन खातिया, वो पेशानी जो गुनहगार है और खताकार है। फलियदउ नादिया, सो वो अपनी मजलिस वालों को बुला लेवे। सनदउ ज़बानिया, हम ज़बानिया को बुला लेंगे। ये जहन्नम के सख्त फरिश्तों का लकब है ज़बानिया। कल्ला ला तुतिहु वस्जुद वक़तरिब, हरगिज नहीं, उसकी बात न मानो। जैसे आज तक बात नहीं मानी, आइंदा भी उसकी बात मानना नहीं चाहिए। और अल्लाह के सामने सजदा करो और उस अल्लाह ताला का कुर्ब यानी नजदीकी हासिल करो। ये 19 नंबर की आयत के ऊपर सजदा है, इसीलिए जितने भी हजरात माँ बहन लाइव सुन रहे हैं वो तमाम इस आयत के ऊपर एक सजदे तिलावत कर लेवे। ये शरीयत का मसला है और हदीस पाक से यहाँ पर सजदा करना साबित है। अब इन आयतों के अंदर जो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो बातें पेश आई उसको अल्लाह ताला ने बयान फरमाया। इंसान जब तक दूसरे का मोहताज रहता है वहां तक सीधा सीधा चलता है, और जब उसको ये ख्याल हो जाए कि मैं किसी का मोहताज नहीं हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, तो उसके अंदर शरकशी और दादागिरी आ जाती है। ये इंसान का अजीब व गरीब हाल अल्लाह ने इस आयत में बयान फरमाया। ये पहली 5 आयत के उतरने के बाद जो 6 नंबर की आयत है वहां से पूरी सूरत एक लंबे जमाने के बाद अल्लाह ताला के यहाँ से आई। और इन आयतों में जिन्होंने हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत की थी उन लोगों का बहुत बुरा अंजाम बयान किया गया कि नबी की मुखालफत करना ये बहुत बुरा और बहुत खतरनाक काम है। अब इसमें बयान किया गया पहली अहम बात जो सबको समझने की है कि इंसान जब ये समझता है कि मुझको किसी की जरूरत नहीं है तो ऐसे वक्त पर इंसान इंसानियत की हद से भी निकल जाता है और शरारत, दादागिरी, फितने करना शुरू कर देता है। दूसरी बात यह है कि जब वो ये समझता है कि मैं किसी का मोहताज नहीं हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, तो दूसरों पर जुल्म करना शुरू कर देता है। ये अजीब इंसान का हाल है और ये बात जहन में रखनी चाहिए कि इस तरह का ख्याल दुनिया में बहुत सारे मालदारों को आता है। जब उनके पास माल ज्यादा हो जाता है, दौलत ज्यादा हो जाती है, तो वो ये सोचते हैं कि हम किसी के मोहताज नहीं हैं और फिर दूसरों पर जुल्म करते हैं, दादागिरी करते हैं। नंबर दो, बाज लोग हुकूमत और इख्तदार के अंदर ये समझने लगते हैं कि हमको किसी की जरूरत नहीं है, हम किसी के मोहताज नहीं है, तो फिर उनके अंदर भी ये बुरी आदतें आना शुरू हो जाती है। नंबर तीन, जिनके पास औलाद ज्यादा हो, जिनके पास नौकर चाकर खादिम ज्यादा हो, वो भी ऐसा समझने लगते हैं। नंबर पांच, चार, जिनके पास दोस्तों की और उसकी गैंग और टीम बड़ी हो, तो ऐसे गैंगस्टर लोग, बड़ी टीम वाले लोग, बहुत सारे जिनके दोस्त होते हैं, ऐसे लोग वो भी यूं समझते हैं कि हम किसी के मोहताज नहीं हैं, हमको किसी की जरूरत नहीं है, तो फिर वो दादागिरी करेंगे, दूसरों के ऊपर जुल्म करेंगे। ये अजीब इंसान का हाल अल्लाह ताला ने इस आयते करीमा के अंदर बयान फरमाया। तो इंसान जब तक दूसरों का मोहताज रहता है सीधा चलता है, और जब उसको ये ख्याल होता है कि मैं किसी का मोहताज नहीं हूँ, तो फिर उसमें शरारत, तूफान, मस्ती, दादागिरी, जुल्म आने लगता है। हालांकि इंसान को एक बात ये सोचनी चाहिए कि अगर मखलूक में किसी तरह का इस्तिगना हो, तो अभी खालिक यानी अल्लाह की तो हर एक को जरूरत है। यानी समझो कि इस दुनिया में मैं किसी का मोहताज नहीं हूं, चलो मान लो थोड़ी देर के लिए, हालांकि ऐसा भी हकीकत में होता नहीं है, फिर भी मान लो थोड़ी देर के लिए कि कोई यूं सोचे कि मैं दुनिया में किसी का मोहताज नहीं हूं, तो भी अपने पैदा करने वाले का, अपने मालिक का तो वो मोहताज है। और अल्लाह ताला की कुदरत के इहाते में घिरा हुआ है, अल्लाह की ताकत के अंदर है, और अल्लाह ताला उसको दुनिया में भी सजा दे सकते हैं और आखिरत में मरने के बाद तो उसको सजा होने ही वाली है। और मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर अबू जहल, जो मक्का के कुरेशियों का सरदार था, बड़ा मालदार भी था, पूरे मक्का वाले उसकी इज्जत करते थे, उसकी बात मानते थे, इसीलिए उसके दिमाग के अंदर ये भूसा भर गया कि मैं सब कुछ हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। इसीलिए उसने तमाम नबियों के सरदार हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बेअदबी की, गुस्ताखी की, तो आयत में अल्लाह ने इलाज बतला दिया, इन इला रब्बिकर रुजआ, यानी सबको अपने अल्लाह के पास लौट करके जाना है। जब मरेंगे तो मर कर अल्लाह के पास जाएंगे, अच्छे कामों का बदला अच्छा मिलेगा, बुरे कामों का बुरा बदला मिलेगा। और दुनिया के अंदर जो जुल्म किया, बेजा दादागिरी की, उसका बुरा अंजाम मरने के बाद उसको देखने को मिल जाएगा। तो ये इंसान अपने रब, अपने अल्लाह, अपने पैदा करने वाले का हर हाल में मोहताज है। उसकी मोहताजी तो कभी खत्म नहीं हो सकती। और एक बात और समझो, इस दुनिया में रहते हुए कोई इंसान ऐसा नहीं कह सकता कि मैं किसी का मोहताज नहीं हूँ। एक भी इंसान इस दुनिया में, जगत में ऐसा बतला दो कि वो यूं कहता हो कि मैं किसी का मोहताज नहीं, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ये बात हो ही नहीं सकती। इसलिए कि इंसान इस दुनिया में ऐसी जिंदगी में है कि वो अकेला कभी अपनी जरूरत पूरी नहीं कर सकता। अल्लाह ताला ने इस दुनिया का सिस्टम, दुनिया का निजाम ऐसा बनाया है कि कोई इंसान अकेला अपनी तमाम जरूरियात पूरी नहीं कर सकता। एक मिसाल लो, एक एग्जांपल लो, खाने का एक लुकमा, एक रोटी का टुकड़ा, चावल का एक निवाला वो अपने हाथ में लेवे, तो कभी उसने सोचा कि ये चावल का लुकमा, रोटी का टुकड़ा जो मेरे हाथ में आया, उसमें कितने इंसानों की मेहनत लगी, कितने जानवरों की मेहनत लगी, तब जाकर ये लुकमा मेरे हाथ में आया। किसान की मेहनत, पानी चलाने वाले की मेहनत, खेती काटने वाले की मेहनत, खाद और फर्टिलाइजर खातर बनाने वालों की मेहनत, फिर आटा पीसने वालों की मेहनत, रोटी बनाने वाले की मेहनत, कितनी मेहनत के बाद एक लुकमा आता है। है कोई इंसान दुनिया में यूं कहे कि मैं अपने लुकमे के लिए किसी का मोहताज नहीं हूँ, सब कुछ मेरा है? बिल्कुल नहीं हो सकता। कपड़ा ले लो, अपने ड्रेस ले लो, आदमी अपने कपड़े के मामले में, ड्रेस के मामले में दूसरों का मोहताज है। आपकी, आपके पास कपड़ा आया तो कभी सोचा कि कितने लोगों ने इस कपड़े के पीछे मेहनत की, कहाँ रुई खेती में हुई, कहाँ कपास बनी, फिर कौन सी जगह पर उसमें से जो है धागे बने, फिर कौन सी जगह उसमें से कपड़े बने, कहाँ उस पर जो है कलर हुआ, कितनी मेहनत के बाद एक कपड़ा हाथ में आता है। तो कोई भी इंसान दुनिया के अंदर ये नहीं कह सकता कि मैं दूसरे किसी इंसान का मोहताज हो नहीं हूँ, कोई नहीं कह सकता। हर एक इंसान दूसरे इंसान का मोहताज है। बल्कि मैं आपको एक बात बतलाऊं, अजीब बात, जो आज दुनिया में बड़े लोग हैं, जो यूं समझते हैं कि हम किसी के मोहताज नहीं, वो ही सबसे ज्यादा मोहताज है, वही सबसे ज्यादा जरूरतमंद है, और सबसे बड़े मोहताज वही है। इसलिए कि एक गरीब आदमी को क्या चाहिए, दो रोटी दो लुकमे चावल के मिल गए, फुटपाथ पर सो गया, रेलवे स्टेशन पर सो गया, बस स्टॉप पर सो गया, गार्डन में सो गया, स्लम एरिया में झुपड़पट्टी में सो गया, उसकी जिंदगी गुजर गई। और जो अपने आप को बड़ा समझता है उसको हर चीज में दूसरों की मोहताजी, बंगला बनाने में मोहताजी, कार में मोहताजी, खाने पीने में मोहताजी, हर चीज में बड़ी मोहताजी। तो जो अपने आप को बड़ा समझते हैं, बड़ा मानते हैं, वो दुनिया में बड़े मोहताज हैं, बड़े जरूरतमंद है। इसीलिए कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि मैं बिल्कुल मोहताज नहीं हूँ। ये इस आयत में अल्लाह ने बयान फरमाया। तो याद रख लो, तमाम इंसानों याद रख लो, हम में से हर एक इंसान अपने पैदा करने वाले मालिक का भी मोहताज है, और हर इंसान दूसरे बहुत सारे इंसानों का भी मोहताज है। इसीलिए कभी इंसान को दादागिरी नहीं करनी, जुल्म नहीं करना, किसी के साथ ना इंसाफी नहीं करनी, हर एक के साथ अच्छा सुलूक करना चाहिए। ये इस प्यारी प्यारी आयत में अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं। आगे एक किस्सा अल्लाह ताला बयान फरमाते हैं, अजीब किस्सा है। हुआ ये कि मक्का में हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम शरीफ में काबा के सामने जाकर नमाज पढ़ते थे, तो एक मर्तबा अबू जहल ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ते देखा तो कहने लगा, मैंने आपको यहाँ नमाज पढ़ने से बार बार मना किया है। यानी मैंने आपको पहले बार बार मना किया कि यहाँ काबा के सामने नमाज भी पढ़ने की, फिर क्यों आके नमाज पढ़ते हो? तो हुजूर ने उसकी बात की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, तो वो कहने लगा अबू जहल कि इस मक्का में बहुत बड़ी मेरी गैंग है, बहुत बड़ी मेरी टीम है, अगर जो आपने आइंदा यहाँ काबा के सामने नमाज पढ़ी और मैंने देख लिया, तो आप जब सज्दे में जाएंगे तो आपकी गर्दन पर मैं पैर रख दूंगा, पांव रख दूंगा। ऐसी खतरनाक अबू जहल ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धमकी दी। अब हुजूर क्या करते थे, काबा के सामने जाके अकेले नमाज पढ़ते, लेकिन वो तो धमकी दे रहा है अबू जहल हुजूर को काबा के सामने नमाज पढ़ने की, क्या आपके गर्दन कुचल दूंगा, आपकी गर्दन तोड़ दूंगा, आपकी गर्दन के ऊपर पैर रख दूंगा, आपको मैं ये कर डालूंगा। ऐसी अबू जहल ने धमकी दी। कुदरती बात देखो, एक मर्तबा हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे काबा के सामने, अबू जहल आया और उसने इरादा भी किया कि हुजूर के करीब में जावे और जाकर के हुजूर की गर्दन पर पैर रखे, नऊज़ु बिल्लाह, हुजूर की गुस्ताखी करे, हुजूर की बेअदबी करे, नऊज़ु बिल्लाह, और हुजूर की गर्दन मुबारक तोड़ देवे, ऐसा उसने इरादा भी किया। चला लेकिन हुजूर के नजदीक जाकर रुक गया और एकदम पीछे हट गया। लोगों ने पूछा कि अरे अबू जहल ये क्या हो गया, तू तो बहुत जोर में शोर में घमंड में तकब्बुर में दादागिरी में हुजूर के करीब जा रहा था, अल्लाह के नबी के पास जा रहा था कि वो सज्दे में जावे तो उनकी गर्दन तोड़ दो, क्यों एकदम रुक गया और पीछे आ गया? अबू जहल कहने लगा कि जब मैं इनके करीब में गया तो मुझे आग की खाई नजर आई, आग की खंदक नजर आई, कि मेरे और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच में एक आग की भरी हुई खाई है, आग की भरी हुई खंदक है, और उसके अंदर पर वाली चीजें मुझे नजर आई, जैसे परिंदों के पर होते हैं, पंख होती है जिसके जरिए वो परिंदे उड़ते हैं, तो कहा इस तरह पंख वाली पर वाली कोई चीज मुझे नजर आई, इसलिए मैं पीछे हट गया। बाद में हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जो अबू जहल को नजर आया पंख वाली चीज पर वाली चीज, वो तो अल्लाह ताला के फरिश्ते थे। अगर ये अबू जहल आगे आता और हुजूर की नऊज़ु बिल्लाह गुस्ताखी करने जाता तो फरिश्ते आकर उसकी बोटी बोटी कर डालते, अल्लाह के फरिश्ते उसके टुकड़े टुकड़े कर डालते, उसको नोच डालते, उसको बिल्कुल खत्म कर डालते। ये खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। तो गोया के अबू जहल का नापाक इरादा अल्लाह ने पूरा नहीं होने दिया, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ताला ने हिफाजत फरमा ली, अबू जहल के फितने से हिफाजत फरमा ली, अबू जहल के जुल्म से अल्लाह ने हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरे पूरी हिफाजत फरमा ली। ये हुजूर का एक जिंदा मौजजा था, एक जिंदा चमत्कार था जो अबू जहल को दिखाया गया। लेकिन भाई, ईमान अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, हिदायत अल्लाह ताला का बहुत बड़ा इनाम है। इतना बड़ा मौजजा देखने के बावजूद भी अबू जहल ईमान नहीं लाया। उसी को अल्लाह ताला ने फरमाया, अरअयतल्लज़ी यनहा, क्या तुमने उस शख्स को यानी अबू जहल को नहीं देखा जो हमारे बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ने से रोकता है। अबदन इदा सल्ला, हमारे बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ने जाते हैं तो वो रोकता है। देखो, नमाजी को नमाज से रोकना बहुत बुरी बात है, बहुत अजीब बात है। कोई नमाज पढ़ता हो तो नमाज पढ़ने दो, नमाजी की नमाज में डिस्टर्ब मत करो, खलल मत करो, एक बात ये। और दूसरी बात ये है कि ये नमाज पढ़ने वाले कोई मामूली इंसान थोड़े ही थे, अल्लाह के नबियों के सरदार हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अल्लाहु अकबर, हुजूर नमाज पढ़ रहे थे और अबू जहल हुजूर को रोकने गया। अब देखो, यहाँ कंपेयर है, तकाबुल है आयत के अंदर। अरअयत इन काना अलल हुदा औ अमरा बित्तक्वा, कि ये नमाज पढ़ने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके अंदर कैसी कैसी खूबी थी, वो हिदायत के ऊपर है, सही रास्ते के ऊपर है। दूसरी खूबी है कि तकवा की तालीम लोगों को देते हैं, अल्लाह का डर लोगों को सिखाते हैं। ये दोनों चीजें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में है, जात के एतबार से भी हिदायत पर, और दूसरों को फायदा पहुंचाने के एतबार से लोगों को तकवा सिखाते, लोगों को अल्लाह का डर सिखाते। दोनों चीजें उनके अंदर बड़ी खूबी की है और दोनों चीजों का लिहाज करना चाहिए। और अबू जहल के अंदर तो बस बुराइयां ही बुराइयां दी। क्या बुराइयां दी? अरअयत इन कज़्ज़ब व तवल्ला, एक तो ये अबू जहल जो हुजूर को नमाज पढ़ने से रोकता था वो नमाजी नहीं, अबू जहल नमाजी नहीं पढ़ता था। नंबर दो, उसका अकीदा खराब, कि उसके अंदर ईमान नहीं था, कुफर था। नंबर तीन, उसके आमाल भी गंदे और बुरे और खराब। तो अबू जहल में तीनों चीजें खराब, नमाज नहीं पढ़ता, अकीदा भी बुरा है, आमाल भी बुरे हैं। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखो, खुद हिदायत पर है, दूसरों को तकवा की तालीम देते हैं, कितने फायदे वाले हैं। अबू जहल ने हुजूर की किसी चीज का लिहाज नहीं किया, हुजूर हिदायत पर है उसका लिहाज करते, हुजूर दूसरों को अच्छी बात सिखलाते उसका लिहाज करते, लेकिन इसने किसी चीज का लिहाज नहीं किया। अल्लाहु अकबर। आगे फरमाया, अलम यालम बि अन्न अल्लाह यरा। सुभान अल्लाह, ये आयत बड़ी जबरदस्त आयत है। क्या उस शख्स को ये मालूम नहीं कि अल्लाह ताला उसको देख रहे? अल्लाह ताला अबू जहल को देख रहे, उस रोकने वाले अबू जहल को अल्लाह देख रहे, अल्लाह ताला नमाज पढ़ने वाले अपने नबी को देख रहे। सब चीज अल्लाह ताला के सामने है। अबू जहल जो नबी को रोकने गया वो भी अल्लाह को मालूम, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे हैं, ये भी अल्लाह ताला को मालूम। हर चीज अल्लाह ताला देख रहे। इसीलिए अबू जहल को जो उसने नबी को नमाज पढ़ने से रोका, उसकी सजा अल्लाह ताला जरूर देंगे। ये आयत हमेशा हमको याद रखनी चाहिए। अलम यालम भी अन्न अल्लाह यरा, अल्लाह ताला हमको देख रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं, पूरी तरफ देख रहे हैं, अच्छी तरीके से देख रहे हैं। बाज लोग आके कहते हैं कि गुनाह नहीं छूटते, तो हम उनको कहते हैं कि ये आयत का हमेशा इस्तेजार रखो कि अल्लाह हमको देख रहे हैं, हर जगह देख रहे हैं, हर हाल में देख रहे हैं, पूरी तरह देख रहे हैं। बल्कि तो मैं तो आप सबको कहता हूँ कि आयत जो है ना सूरह अलक की आयत नंबर 14, उसको रोजाना 5 मिनट दिमाग में सोचो बैठकर। इसको मुराकबा कहते हैं, आंख बंद करके ध्यान लगाकर एक चित्त होकर के सोचना, ये मुराकबा कहलाता है। आप सबको मैं कहता हूँ ये आयत नंबर 14, उसका रोजाना 5 मिनट मुराकबा करो। अलम यालम भी अन्नल्लाह यरा, यूं सोचो ये आयत में कि मेरे अल्लाह मुझे देखते हैं, मेरे अल्लाह मुझे हर वक्त देखते हैं, मेरे अल्लाह मुझे हर हाल में देखते हैं, मेरे अल्लाह मुझे पूरी तरह देखते हैं। इस चीज को ध्यान में रखो 5 मिनट रोजाना। फिर 5 मिनट से आगे चलेगा धीरे 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 धीरे, हमारे 24 घंटे इंशाल्लाह ऐसे हो जाएंगे कि हर वक्त ध्यान रहेगा कि अल्लाह सुबहानहु व ताला मुझे देख रहे हैं। जब ये ख्याल रहेगा तो गुनाह से बचना आसान, बुराई से बचना आसान, गंदे काम से बचना आसान, गुनाह छोड़ना आसान, बुराई छोड़ना आसान। जब अल्लाह देख रहे इस बात का ख्याल आ जाएगा तो गुनाह से बचना बिल्कुल आसान हो जाएगा। कल्ला लइल्लम यंतही लनस्फअन बिन्नासिया, क्या उस अबू जहल को चाहिए कि हरगिज हमारे नबी को नमाज पढ़ने से नहीं रोके? अगर उसने रोकने का काम नहीं छोड़ा तो हम उसको पेशानी के बाल पकड़कर खींचेंगे। देखो सामने वाले जो बाल होते हैं ना, वो किसी के हाथ में आ जावे तो आदमी हमारी पकड़ के अंदर आ जाए। इसलिए जो है बिन्नासिया, चोटी के बाल पकड़ करके खींचना, सामने वाले बाल किसी के फीट और मजबूत पकड़ लेना, तो अल्लाह ताला उसको उसके पेशानी के बाल पकड़ करके घसीटेंगे। कहाँ? जहन्नम के अंदर, आखिरत के अंदर। तो गोया के अल्लाह की जब पकड़ आएगी तो वो मजबूर हो जाएगा और फिर उसको कोई छुड़ाने और बचाने वाला नहीं होगा। और कैसा? नासियतिन काजिबतिन खातिया, उस अबू जहल की पेशानी, सामने वाले बाल गुनेगार और खुद खताकार, और रात दिन गुनाह में अल्लाह की नाफरमानी के अंदर पड़ा रहने वाला आदमी, अजीब आदमी था। और उसने हुजूर को धमकी दी थी ना कि मेरी गैंग बहुत बड़ी है, मेरी टीम बहुत बड़ी है, तो अल्लाह ने उसको खुला चैलेंज दिया। फलियदउ नादिया, वो अपनी मजलिस वालों को बुलावे, अपनी गैंग वालों को बुलावे, अपनी टीम वालों को बुलावे, बुला लेवे जिसको बुलाना हो हमारे नबी को रोकने के लिए, हमारे नबी पर जुल्म करने के लिए। हम किसको बुलाएंगे? सनदउ ज़बानिया, हम ज़बानिया फरिश्तों को बुलाएंगे। ज़बानिया फरिश्ते जहन्नम के बड़े सख्त फरिश्ते, बड़े ताकत वाले फरिश्ते। अल्लाह फरमाते कि हम उनको बुलाएंगे। ये क्या जो है हमारे नबी को रोकता है? आगे फरमाया कल्ला ला तुतिहु वस्जुद वक्तरिब। लेकिन हुआ ये कि अबू जहल ने अपनी गैंग को नहीं बुलाया, अपनी टीम वालों को नहीं बुलाया, अपनी मजलिस वालों को नहीं बुलाया, इसीलिए अल्लाह ताला ने मलाइका को भी नहीं भेजा। रिवायतों में आता है कि अगर अबू जहल की गैंग वाले, उसके दोस्त, उसकी टीम वाले उसकी मदद करने के लिए आते तो जहन्नम के जबानिया फरिश्ते आते और सबकी नजरों के सामने अबू जहल को पकड़ लेते, खींच लेते और उसको तबाह बर्बाद कर देते, उसके टुकड़े टुकड़े कर देते। ये तो अच्छा हुआ कि उसने अपनी गैंग और टीम को नहीं बुलाया, वो पीछे हट गया, वरना उस दिन अल्लाह के फरिश्ते आकर के उसकी बोटी बोटी करके टुकड़े टुकड़े करके उसको जो है बर्बाद कर देते। अजीब बात इस आयत में बयान की गई और आखिर में फरमाया गया कि आप अबू जहल की बात न मानो, आज तक नहीं मानी, आइंदा भी मत मानो और अल्लाह के सामने सजदा करो और अल्लाह ताला की नजदीकी हासिल करो, अल्लाह का कुर्ब हासिल करो। एक हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा सजदे में होता है तो अल्लाह ताला से बहुत नजदीक होता है। हाँ, सजदे में हम जाते हैं तो ऐसा लगता है कि जमीन पर सर रख दिया, हालांकि उस वक्त बंदा अल्लाह ताला के बिल्कुल नजदीक होता है, अल्लाह के बिल्कुल करीब होता है। इसीलिए हदीस में फरमाया कि सजदे में अल्लाह से बहुत दुआ करो, सजदे में अल्लाह से बहुत दुआ करो। दूसरी हदीस में आया है कि सजदे की हालत में दुआ कबूल होने के लायक होती है, सजदे की हालत में दुआ कबूल होती है। इसीलिए नफिल नमाजें पढ़ो तो उसमें सजदे में दुआ करो। और कौन सी दुआ? जो दुआ कुरान में आई, जो 40 रब्बाना है, कुरान की मुख्तलिफ दुआएं, जो दुआएं हदीस पाक में आई अरबी में हुजूर की पढ़ी हुई दुआएं, वो सजदे में पढ़ सकते हैं नफिल नमाज में। फर्ज नमाज के अंदर सजदे में दुआ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि फर्ज नमाज के अंदर तो जल्दी से फारिग होना है, इसीलिए फर्ज नमाज के अंदर सजदे में दुआ ना करो, बाकी नफिल नमाजों में दुआ मांगो। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नफिल नमाज में दुआएं साबित है। अभी 15 शाबान गई, उस वक्त मैंने आपको हदीस सुनाई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में थे और हुजूर दुआ मांग रहे थे, तो मालूम हुआ कि नमाज में बंदा अल्लाह ताला के बिल्कुल करीब हो जाता है और अल्लाह के करीब जाने से अजमत हासिल होती है। और इस आयत ने हमको एक बहुत बड़ा सबक ये भी दिया कि कोई मुखालिफ, कोई दुश्मन किसी बात की धमकी देवे तो उसकी धमकी सुने बगैर अच्छे काम करते रहो, अच्छे काम में लगे रहो। आज दुनिया में बहुत सारे फितीन लोग हैं कि जो अच्छे काम करने वालों को रोकते हैं, तो ऐसे फितीन लोगों के फितनों की तरफ ध्यान नहीं देने का, बल्कि इखलास से अपना काम करते रहने का, जैसे खुद अल्लाह ताला ने हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया कि ला तुतीहु, अबू जहल की बात मत मानो, अबू जहल की बात की तरफ ध्यान मत दो। लिहाजा ये हम सब के लिए बहुत बड़ा सबक है कि अबू जहल जैसे फितीन हर जमाने में होते हैं, ऐसे लोग अगर धमकी दे रहे तो उनकी बात सुनने की नहीं, उनकी बात मानने की नहीं, जो अच्छे और नेक काम करते हैं वो काम करते रहने का। अल्लाह ताला हम सबको आफियत अता फरमाए, हम सबको अल्लाह ताला राहत अता फरमाए। अभी घरों में बैठे हैं, नमाजें पढ़ रहे हैं तो बहुत ध्यान लगा करके नमाज पढ़ो, इत्मीनान से नमाजें पढ़ो। और ऐसे तो हम लोग जब लॉकडाउन नहीं होता है नमाज पढ़ते हैं तो जल्दी जल्दी फटाफट चटाचट नमाजें पढ़ डालते हैं, अभी लॉकडाउन है, घरों में बैठे हैं, बहुत ध्यान से इत्मीनान से नमाज पढ़ो, इत्मीनान से सज्दे करो, इत्मीनान से रुकू करो और नफिल नमाज के सिद्दों में अल्लाह से दुआ भी मांगो। अरबी की दुआ जितनी भी याद हो, ये रब्बना आती ना तो याद ही होगी, ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اور قرآن کی حدیث پاک کی جو دعا بھی یاد ہو سجدے میں مانگو, رو رو کے مانگو, گڑ گڑا کے مانگو. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جا کے اللہ سے رو رو کے دعائیں مانگتے تھے. بس دعا ہماری سب سے بڑی طاقت ہے, اور نماز کے ذریعے سے بندہ اللہ کے قریب پہنچ جاتا ہے, اللہ کے نزدیک پہنچ جاتا ہے. تو نمازیں اللہ تعالیٰ کے پیارے بننے کا, اللہ کے نزدیک جانے کا بہترین ذریعہ ہے. فرض بھی پڑھو, نفلے بھی پڑھو, سنتیں بھی پڑھو. ابھی کتنا اچھا چانس ہے کہ تمام نماز آدمی پڑھ سکتا ہے, سنت موقعدہ, سنت غیر موقعدہ, نفیل, فرض, وتر, تہجد, اشراق, چاش, اوابین, تحیت الوضو, نماز شکرانہ, نماز توبہ, حاجت کی نماز, ساری نمازیں پڑھ سکتے ہیں. بس اللہ کی طرف دھیان دو, نماز کی برکت سے اللہ کے نزدیک ہو جاؤ. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. پھر سے کہہ دوں, سب لوگ آج ابھی جس کا وضو ہے وہ ابھی سجدہ کر لے, ورنہ جب ظہر کی نماز پڑھیں گے تو اس وقت کے اوپر سب لوگ ایک سجدہ کر لینا.